Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 9वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। जब कई फ्रांसीसी कुलीन और ईसाई सरदार क्रूसेडर्स के विशाल समूह में शामिल हो गए तो उन्होंने टाइबाल्ट को अपना सेनापति चुना। टाइबाल्ट ने सेना के मार्ग के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से एक दल इटली भेजा। वेनिस के राष्ट्रपति के साथ हुए समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि वेनिस एक वर्ष तक सैनिकों के परिवहन और भोजन का खर्च वहन करेगा और 50 युद्धपोतों का आयात करके क्रूसेड्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी लागत 85,000 चांदी के सिक्के निर्धारित की गई थी जिसका भुगतान 4 किस्तों में किया जाना था। जब प्रतिनिधि फ्रांस लौटे तो क्रूसेड सेना का सेनापति टाइबाल्ट जा चुका था, इसलिए नेताओं की एक परिषद बुलाई गई जिसमें सामंतों ने बोनिफेस नाम के एक व्यक्ति को अपना सेनापति चुन लिया। बोनिफेस ने चर्च में पोप के प्रतिनिधि सेंट फुल के हाथों से युद्ध क्रॉस प्राप्त किया। वो अपनी सेना के साथ अल्प्स पर्वतों के रास्ते वेनिस में दाखिल हुआ। वेनिस के लोगों ने एक साथ 85,000 सिक्कों की मांग की, लेकिन वे उन्हें एक साथ चुका नहीं सके। वेनिस ने जारा के बंदरगाह पर, जिस पर हंगरी के राजा ने कब्जा कर लिया था, क्रूसेडरों की मदद करने और मुस्लिम क्षेत्र पर हमला करने के बाद उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए समय देने की पेशकश की। क्रूसेडरों ने इस प्रस्ताव की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि वे यरूशलम पर विजय प्राप्त करने और उसे मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए निकले थे। अब इस प्रस्ताव के बाद उन्हें अपने ही धर्म के लोगों से लड़ना होगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन धन और पूंजी के लिए वेनिस के अंतहीन लालच और उनकी हताशा ने उन्हें इसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पोप को क्रूसेडरों के इस फैसले के बारे में पता चला और उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने पोप के विरोध पर ध्यान नहीं दिया। क्रूसेडर सेनाएं वेनिस की सेना के साथ जारा की ओर बढ़ी। 2 हफ्ते की घेराबंदी के बाद जब लोगों का प्रतिरोध टूट गया तो उन्होंने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। क्रूसेडरों ने शहर की संपत्ति लूट ली और उसे वेनिस वासियों के साथ बांट लिया। पोप ने पहले तो क्रूसेडरों की निंदा की और क्रूसेडर विजेताओं को दोषी ठहराया, लेकिन क्रूसेडरों ने पोप के पास एक दूत भेजकर उन्हें क्रूसेडरों को क्षमादान देने के लिए राजी कर लिया। पोप ने उनसे लूटी गई संपत्ति उनके असली मालिकों को लौटाने को कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। सर्दियों की शुरुआत की वजह से क्रूसेडरों ने जारा में शीतकाल बिताने का फैसला लिया और वसंत में मुसलमानों से लड़ने के लिए निकल पड़े। उसी समय एलेक्सी चतुर्थ, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने पिता के खोए हुए सिंहासन पर दावा किया था, क्रूसेडर नेताओं के पास आया और उनसे कॉन्स्टेंटिनोपल का शासन भी उसे वापस करने का अनुरोध किया। बदले में उसने क्रूसेडरों को 2,00,000 सिक्के देने, कॉन्स्टेंटिनोपल के रूढ़िवादी चर्च को लैटिन चर्च का पालन करने के लिए बाध्य करने और मुसलमानों से लड़ने के लिए क्रूसेडरों के साथ 10,000 सैनिक भेजने का वादा किया। क्रूसेडरों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पोप और कुछ क्रूसेडर कमांडरों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए क्रूसेडर सेना एलेक्सियस के अनुरोध पर कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर रवाना हो गई। क्रूसेडरों का बेड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल के पास डेरा डाले हुए था। कॉन्स्टेंटिनोपल के शासक सम्राट एलेक्सियस तृतीय ने उनसे इस अभियान का उद्देश्य पूछा। बोनीफेस ने सम्राट को एलेक्सियस को शासन सौंपने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एलेक्सियस तृतीय ने इनकार कर दिया और जंग के लिए तैयार हो गए। कॉन्स्टेंटिनोपल क्रूसेडरों की सेना के खिलाफ रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। वहां की सेना अभी तक हुए नुकसान से उबर नहीं पाई थी और उसके ज्यादातर सैनिक हिचकिचा रहे थे। ऐसी स्थिति में सैनिकों की रेजिमेंट्स का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग एलेक्सियस तृतीय को अयोग्य और एक आक्रमणकारी मानते थे, इसलिए उसके समर्थन में रुचि नहीं रखते थे। खैर, युद्ध छिड़ गया। क्रूसेडरों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को पूरी तरह से घेर लिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में शहर बड़ी मुश्किल से टिका रहा, लेकिन जब एलेक्सियस तृतीय को लगा कि प्रतिरोध व्यर्थ है तो वो भाग गया। शहर के लोगों ने पूर्व सम्राट एलेक्सियस चतुर्थ के पिता को, जो जेल में थे, रिहा कर दिया और उन्हें अपना नेता चुन लिया। फिर उन्होंने क्रूसेडरों को संदेश भेजा कि युद्ध जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलेक्सियस चतुर्थ के पिता सम्राट बन चुके हैं। क्रूसेडरों ने पिता को अपने पुत्र को सहशासक के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद लोगों ने क्रूसेडर सेनाओं के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वार खोल दिए। क्रूसेडरों ने एलेक्सियस से अपने वादे निभाने का अनुरोध किया, लेकिन चूंकि पिछले सम्राट ने शहर का खजाना खाली कर दिया था और भागते समय उसे अपने साथ ले गए थे, इसलिए नए सम्राटों ने शहर की जनता पर नए कर लगा दिए, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। शहर में क्रूसेडर सैनिकों की बेरोक टोक आवाजाही से लोगों में असंतोष और बढ़ गया, क्योंकि वहां के लोग इसे बर्बर और असभ्य मानते थे। क्रूसेडर सैनिक वहां के शहरों और गांवों को लूटते थे। शहर में प्रवेश करने के बाद क्रूसेडर सैनिक किलियोमेनीज के टेंपल में घुस गए और उसे लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। आग शहर के अन्य हिस्सों में फैल गई, जिससे पूरा शहर लगभग जलकर खाक हो गया। इससे नए शासकों के प्रति लोगों का असंतोष और बढ़ गया। इन कारणों से कॉन्स्टेंटिनोपल की क्रोधित जनता विद्रोह पर उतर गई। उन्होंने एलेक्सियस को गद्दी से उतार दिया और एक योग्य व्यक्ति को सम्राट चुना। इस समय क्रूसेडरों ने शहर को पूरी तरह से लूटने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने शहर पर अधिकार कर लिया और 3 दिनों तक बेरहमी से जनसंहार और लूटपाट की। इस प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल का भव्य शहर विनाश की कगार पर पहुंच गया। विल ड्यूरेंट इस शहर की भव्यता के बारे में लिखते हैं, जिन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल कभी नहीं देखा था, वे शहर में प्रवेश करते ही दंग रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में कॉन्स्टेंटिनोपल जैसा भव्य और समृद्ध शहर भी है। ये ऊंची दीवारों और मजबूत मीनारों वाला, शाही महलों और भव्य गिरजाघरों वाला शहर था। ऐसी इमारतों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई उन्हें अपनी आंखों से न देखे तो उसे यकीन ही नहीं होता। इस शहर की लंबाई चौड़ाई दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा थी। मायर अपनी किताब में क्रूसेडरों द्वारा शहर की लूटपाट के बारे में बताते हुए लिखते हैं, शहर में आर्ट के अजीबोगरीब और सुंदर नमूने थे, जो क्रूर क्रूसेडर सैनिकों के हमलों में नष्ट हो गए। यहां तक कि ईसाई पादरियों ने भी शहर की लूटपाट में सक्रिय रूप में भाग लिया। फादर मार्टिन ने चर्च के एक पादरी को धमकी दी कि अगर उन्हें उन कलाकृतियों का खजाना नहीं दिया गया जिन्होंने उन्हें ग्रीस के सभी खजानों से ज्यादा प्रभावित किया था, तो वो उसे मार डालेंगे। पादरी ने जल्दबाजी और लालच में जहाज में भरकर यूरोप के लिए ढेर सारा खजाना और लूट का माल भेज दिया। फ्रांसीसी, जो वेनिस वासियों से कम सभ्य थे, शहर की लूटपाट और विनाश में ज्यादा क्रूर थे। उन्होंने घरों को लूटा, हर कीमती चीज लूट ली और जो कुछ वे नहीं ले जा सके उसे नष्ट कर दिया। रंसीमल कहते हैं, वो उस वक्त लूटपाट और तबाही रोकते थे जब वो नशे में धुत होते थे या बलात्कार में व्यस्त। धर्म योद्धाओं ने सभी पुस्तकालयों, चर्चों और गिरजाघरों को नष्ट कर दिया। हागिया सोफिया के गिरजाघर में सैनिकों ने पवित्र ग्रंथों और संतों की कब्रों को रौंद डाला और गिरजाघर के रेशमी पर्दों को गिरा दिया। उन्होंने मेहराब के पर्दे, जिन पर संतों के चित्र थे, फाड़ दिए और उन्हें लूट ले गए। उन्होंने घरों को जला दिया और लोगों की संपत्ति लूट ली। जब कॉन्स्टेंटिनोपल की कुलीन महिलाओं को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने सेंट सूफी के गिरजाघर में शरण ली। चर्च के बिशप कांपते हाथों में बाइबल उठाए हुए चर्च के सामने कतार में खड़े होकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, लेकिन धर्म योद्धाओं ने उन्हें पीछे धकेल दिया और जबरन चर्च में घुस गए। उन्होंने चर्च में मौजूद सभी शरणार्थियों के सिर काट दिए, कीमती सामान लूट लिया और चर्च को आग लगा दी। इस नरसंहार और लूटपाट के बाद क्रूसेडरों ने नए शासक को कॉन्स्टेंटिनोपल की गद्दी से हटा दिया और शहर के आसपास की जमीनें आपस में बांट लीं। उन्होंने लगभग आधी सदी तक इस क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन ना तो ये क्षेत्र हमेशा के लिए ग्रीक और धर्म योद्धाओं के अधीन रहा, ना ही वहाँ के चर्च ने लैटिन चर्च का अनुसरण किया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इतिहास में एक अजीबोगरीब घटना घटी, बच्चों का धर्म युद्ध।